मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी अभी दो इंडेक्स जारी हुए हैं, बिल्कुल 2-3 दिन के फासले से। आपको इसके बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, तो पहले तो मैं इसके बारे में सतर्क करना चाहूंगा। अभी मैंने चर्चा की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके 2-3 दिनों के बाद ही एक दूसरा इंडेक्स जारी किया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसे आप कह लीजिए विश्व प्रसन्नता सूचकांक। ये भी इंडेक्स हैप्पीनेस का इंडेक्स है, इसे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहीं कहीं कहा जा रहा है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक। मैं इसलिए सतर्क आपको करना चाह रहा हूं क्योंकि कभी कभी इस तरह के आंकड़े हमें भ्रमित कर देते हैं और हमारा सब कुछ स्पॉइल कर देते हैं। भ्रमित होने की संभावना 2 कारणों से है, इसके अंतर को समझ लीजिए। जब हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, याद रखिए ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं है, ये ह्यूमन का डेवलपमेंट है, मनुष्य का विकास है। और जब हम प्रसन्नता की बात करते हैं तो वो कोई राष्ट्रीय प्रसन्नता उस तरह से नहीं है। राष्ट्र क्या प्रसन्न होगा, मनुष्य प्रसन्न होगा तो राष्ट्र प्रसन्न होगा, तो वो मनुष्य की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। अब ये बताइए कि क्या विकास का प्रसन्नता से कोई संबंध नहीं है? है। हम ये मान करके चलते हैं कि जो जितना विकसित होगा, जितना विकास करेगा, वो उतना खुश होगा सामान्य तौर पर, भले ही आप इसे पूरी तरह से सहमत ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये पहला कारण है। दूसरा जो कारण है कि इनमें जो भारत की स्थिति है वो लगभग लगभग एक जैसी है, इसीलिए मैं इन दोनों की चर्चा कर रहा हूं। हालांकि हैप्पीनेस के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अंतर स्पष्ट करने के लिए मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। जैसे देखिए, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें भारत का स्थान है 134th, और जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें स्थान है 126th, तो 134वां ह्यूमन डेवलपमेंट में है और 126वां हैप्पीनेस में है, तो 124, 126, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज होने की स्थिति आ जाती है, इसीलिए मैंने सतर्क किया है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वां स्थान रखते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर कितने कंट्री हैं? 193, तो हम 193 में 134वें हैं। इसका मतलब है कि हमसे नीचे जिनका कम डेवलपमेंट है लगभग लगभग 60 देश तो है। लेकिन जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं जहां हमारा स्थान 126वां है, तो हमारे जो कॉम्पिटिटर है उन देशों की संख्या है 143, यानी कि 143 में हम 126 है, यानी कि हमसे जो थोड़े से कम सुखी हैं, कह लीजिए कम खुश हैं, या थोड़े से ज्यादा दुखी हैं कह लीजिए, केवल लगभग 17 कंट्रीज रह जाती बस। यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यह बात बहुत मायने रखती है कि आपकी जो रैंक आई है वो कितने देशों के बीच आई है। तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करने जा रहा हूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। आइए अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के चरित्र से आप काफी समय से परिचित हो गए होंगे। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि मैं करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक लेता हूं, उन्हीं टॉपिक्स को लेता हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ते हैं, और फिर मैं परिचयात्मक रूप से उन्हें आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी पैदा कर सकूं, और ऐसी एबिलिटी जो सिविल सर्विस के लिहाज से जरूरी है, बस मेरी कोशिश केवल यही रहती है। तो दोस्तों, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको मालूम होनी चाहिए। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के बहुत डिटेल में मेरा एक लेक्चर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उन्होंने ये डेवलप किया है। अमर सेन का भी उनको साथ मिला था, दोनों ने मिलकर के बाद में फिर काम भी किया। उन्होंने 1990 में इसे डेवलप किया, याद रखिए 1990 में इसे डेवलप किया। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 1990 से चला आ रहा है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि 2010 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, यानी कि अभी जिस हम ह्यूमन इंडेक्स की बात करते हैं डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये 2010 से कंटिन्यू कर रहा है। राइट, मैंने कहा ये 1990 से चल रहा है। क्या आपको 1990 का जो वर्ष है या इसके आसपास 91-92 कह लीजिए, इसके बाद जो दशक शुरू हुआ है, उसकी कुछ अद्भुत विशेषता मालूम है? एक सबसे बड़ी विशेषता मालूम है, याद करने की कोशिश कीजिए, याद आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी की एनालिसिस करेंगे तो वो एनालिसिस यहीं से निकल करके आएंगे। तो आपको मालूम है कि 1990 के बाद से पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू, वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ, ध्यान आ गया होगा। और एक साल के बाद ही भारत ने भी इसे स्वीकार कर लिया, यानी कि उदारीकरण के बाद से पूरी दुनिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत हो गई, ठीक है, 1990, यानी कि अगर हम आज मानकर चले तो लगभग 34-35 ईयर्स इसे हो गए लगातार जारी करते हुए। अब जब हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे तो आपको ये जानकर दुखद आश्चर्य होगा, जी हाँ, मैं दुखद आश्चर्य ही कह रहा हूँ जानबूझ करके, कि 34 साल पहले हम कहाँ थे, 131वें स्थान पर थे, 131, और आज हम कहाँ हैं, 134, 135, 135 में इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल हम 135 पर थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 131 से 135 के बीच में झूल रहे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या 30-35 सालों के बीच में हम ज्यों के त्यों हैं, हमने किसी भी क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं किया है, हम ठहरे हुए हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो जब हम इस पर विचार करेंगे तो डेफिनेटली फिर हमें ये देखना होगा कि भाई इसके पैमाने क्या है, इनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो जो इंडेक्स को तैयार किया जाता है इसके तीन मेन पैमाने हैं, कह लीजिए कि कसौटियां हैं, और डेफिनेटली जो तीनों कसौटियां हैं हम इनकी उपयोगिता से इनकार नहीं कर सकते। एक तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि जो जीवन की जो प्रत्याशा है, यानी कि जो औसत नागरिक है उस देश का, उसकी उम्र कितनी है। आप जान रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में भारत ने बहुत तरक्की की, हम आजादी के समय में जो हमारी जीवन प्रत्याशा थी उससे लगभग लगभग हम दो गुने की स्थिति में तो आए गए, तो जीवन प्रत्याशा पर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। नो डाउट कि हमारे लोगों के जो आहार की जो क्षमता है वो बढ़ी है, अब हमारे पास अनाज की कमी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत हो गई हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है तो जीवन प्रत्याशा। जो सेकंड पैरामीटर है वो है एजुकेशन। देखिए जब हम जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं तो उसमें भोजन आ जाता है। एजुकेशन ह्यूमन डेवलप का बहुत बड़ा आधार है। मैं मनुष्य हूं खत्म हो गई बात, लेकिन एजुकेटेड जो पर्सन होगा वो ज्यादा डेवलप होगा, उसको जीवन के तरीके ज्यादा अच्छे से मालूम है, हेल्थ की जानकारी है, सोसाइटी की जानकारी है, कानूनों की जानकारी है, काम करने में उस स्किल्ड है, उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है कि एजुकेशन नो डाउट कि ह्यूमन को तराशने में, उसको डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। अब जो तीसरा है वो है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। सीधी सी बात है कि जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जिसने स्किल डेवलप की हुई है यानी कि जिसकी एजुकेशन अच्छी है, तो पर कैपिटा इनकम भी उसकी बेहतर होगी, और जो पर कैपिटा इनकम जिसकी ज्यादा होगी तो उसका जीवन स्तर भी ज्यादा होगा, अच्छा होगा, अच्छे मकान में रहेगा, अच्छा भोजन करेगा, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा लिखाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा। ये तीन पैरामीटर्स दोस्तों, तीन पैरामीटर्स के आधार पर अब आप भारत का मूल्यांकन कीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति हमारी क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भारत को बिल्कुल नीचे ले जाती है वह है गरीबी। जनसंख्या नो डाउट गरीबी का एक कारण हो सकती है, क्योंकि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं तो पता लगा कि ऊपर जो देश है ज्यादातर वे देश है जिनकी पॉपुलेशन हमारे मोहल्लों जितनी भी नहीं है। जैसे जो फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड, अक्सर स्विट्जरलैंड आप देखेंगे कि जो नॉर्डिक कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती है ना, उत्तर पूर्वी यूरोप की तरफ है, तो ये हमेशा यहां भी ऊपर रहते हैं, और जब आप हैप्पी इंडेक्स में देखेंगे वो तब भी ऊपर होते हैं, है ना। इसका कारण क्या है, बहुत बड़ा कारण ये बताया जाता है, नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो सब तो है ही है, वहां का मौसम बहुत ही खराब रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है। स्विट्जरलैंड तो मैं गया हुआ हूं, तो स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कितनी है, 87 लाख, सोच के देखिए हमारे कितने सारे शहर इससे बड़े हैं। और मजेदार बात है कि जो नॉर्वे है उसकी तो और कम है, 54 लाख सेकंड पोजीशन पर है, और तीसरे पोजीशन पर है आइसलैंड। आइसलैंड की आबादी कितनी है जानकर आपको हंसी आएगी, उसकी आबादी है 4.25। एक बात तो है कि जब आपकी आबादी कम होती है तो लोगों को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है ना, राष्ट्र के पास इतनी क्षमता होती है कि वो अपने सभी नागरिकों की देखभाल कर सके, तो भारत की आबादी ज्यादा है तो वो हमारी एक लिमिटेशन है, आर्थिक रूप से भी हम इतने सक्षम नहीं रहे हैं तो वो हमारी अपनी लिमिटेशन समझ में आती है। लेकिन 1990 के बाद से जब हम आज के विकास को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो विकास है ये सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर पाए विकास के फायदे। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने आप को कहते हैं। जो हमारा जो विकास है वो 7% की दर से लगभग हो रहा है। गरीबी के बारे में भी जब हम बात करते हैं तो आप देखिए जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी सूचकांक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसके आधार पर बकायदे आंकड़े आए हैं, सरकारी आंकड़े हैं कि केवल 5 करोड़ लोग ही गरीब हैं। फिर आपने ये भी सुना होगा कि जो अत्यधिक गरीबी की एक परिभाषा निकाली गई है कि जो व्यक्ति 159 के आसपास ही है, से रोजाना कम कमाता है, वो अत्यधिक गरीब। तो ऐसे लोगों की भी संख्या हमारे यहाँ 2 करोड़ रह गई है। हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम सस्ते में अनाज दे रहे हैं। इसके बाद भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इतने नीचे क्यों हैं? ये सोचने की बात है। क्या हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी ठीक नहीं है डेवलपमेंट के, या क्या हम जो विकास की जो नीतियां तैयार कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए जो कानून नियम तरीके ईजाद कर रहे हैं, उसको ठीक से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये कारण है, या ये भी एक कारण हो सकता है? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है ही, आप जानते हैं, बकायदे इसके आंकड़े भी है कि हमारे 100 लोगों में से केवल 40 लोग रोजगार की तलाश करते हैं, 60 लोग ये मान करके चलते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो तलाश ही नहीं करते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और बहुत ज्यादा चिंता पैदा करने वाली है। तो गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हमारी इकोनॉमी चूंकि एग्रीकल्चर पर आधारित है वो एक बहुत बड़ा कारण है। जब हम अपनी इस आबादी को औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में शिफ्ट कर सकेंगे तो हमारा जो सूचकांक है वो ऊपर बढ़ सकेगा। हमारे जो लोग भी हैं जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं वो स्किल्ड नहीं है तो उनकी आय कम होती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम कितने सालों से चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस इंडेक्स के माध्यम से उठाए जा सकते हैं और उन पर विचार भी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, संक्षिप्त में मैंने उन बिंदुओं की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से एक मित्र हैं प्रियंका झानी दिल्ली से। प्रियंका, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।